नमस्कार, आप सुन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र समाचार सचिन गौड़ के साथ। 21 अगस्त 2020 के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, अभूतपूर्व संकटों के दौर में असाधारण योगदान देने वाले मानवीय राहत कर्मियों की सराहना। विश्व मानवीय दिवस पर यूएन प्रमुख ने आभार जताया। कोरोना वायरस संकट पर पार पाने के लिए वैक्सीन राष्ट्रवाद के खतरे से बचना होगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेक्नोलॉजी बनी अहम औजार, लेकिन गहरी होती डिजिटल खाई को पाटना भी जरूरी। और एक खास बातचीत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कारों की अंतिम सूची में जगह बनाने वाली निधि पंत से। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने 19 अगस्त को विश्व मानवीय दिवस पर अपने संदेश में उन राहत कर्मियों के प्रति आभार जताया है जो विकराल चुनौतियों के बावजूद लाखों करोड़ों लोगों को बचाने और उनकी जिंदगियां बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यूएन प्रमुख ने ध्यान दिलाया है कि खामोशी से काम कर रहे ये सहायता कर्मी एक बेहद मुश्किल दौर में असाधारण कार्य कर रहे हैं।
These real life heroes are doing extraordinary things in extraordinary times to help women, men and children whose lives are upended by crisis.
वास्तविक जीवन के नायक असाधारण समय में उन महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की मदद के लिए असाधारण काम कर रहे हैं जिनकी जिंदगियों को संकटों ने हिला कर रख दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार, शिक्षा, भोजन, जल और सुरक्षा की कमी लाखों करोड़ों को मुश्किल हालात की ओर धकेल रही है। यूएन प्रमुख ने ध्यान दिलाया कि अपने मेजबान समुदायों की मदद करने वाले शरणार्थी, बीमारों की देखभाल करने वाले और बच्चों को वैक्सीन देने वाले स्वास्थ्यकर्मी और हिंसक संघर्ष से प्रभावित इलाकों में भोजन, जल और दवाओं की सुलभता के लिए प्रयासरत सहायता कर्मी अक्सर खुद जरूरतमंद होते हैं, लेकिन संकट की इस घड़ी में वो अन्य लोगों की सहायता कर रहे हैं। विश्व मानवीय दिवस हर वर्ष 19 अगस्त को उन मानवीय राहत कर्मियों की स्मृति में मनाया जाता है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हताहत हो गए। 19 अगस्त 2003 को इराक की राजधानी बगदाद में कैनाल होटल में एक बम धमाके में इराक में यूएन के विशेष प्रतिनिधि सहित 22 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर 19 अगस्त को विश्व मानवीय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इस बीच मानवीय राहत मामलों में समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने बुधवार को बताया कि दुनिया भर में राहत और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं। पहले के वर्षों की तुलना में वर्ष 2019 में राहत कर्मियों पर ज्यादा हमले हुए हैं और 2018 के मुकाबले पीड़ितों की संख्या 18% बढ़ी है। अधिकांश हमले सीरिया, दक्षिण सूडान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अफगानिस्तान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य में हुए हैं। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए असरदार वैक्सीन विकसित करने के प्रयास तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने वैक्सीन राष्ट्रवाद के खतरे के प्रति सचेत किया है। उन्होंने दोहराया है कि कोरोना वायरस संकट पर पार पाने के लिए वैश्विक एकजुटता बेहद अहम है। कोई भी कहीं भी तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक हर कोई हर जगह सुरक्षित नहीं है। एक रिपोर्ट के साथ अंशु शर्मा।
यूएन एजेंसी के प्रमुख टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने सदस्य देशों को एक पत्र लिखकर उनसे वैश्विक वैक्सीन सुविधा कोवैक्स में शामिल होने का आग्रह किया है। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके जरिए निर्धन और धनी सभी देशों में असरदार टीकाकरण सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा, वैसे तो नेताओं की पहली इच्छा अपने लोगों की रक्षा करने की है, लेकिन महामारी के खिलाफ कार्रवाई को सामूहिक रखना होगा। सीमित आपूर्ति को रणनीतिक ढंग से वैश्विक स्तर पर साझा करना असल में हर देश के राष्ट्रहित में है। वैश्विक वैक्सीन सुविधा कोवैक्स अप्रैल 2020 में यूएन स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा शुरू की गई एक्ट एक्सेलरेटर नामक उस पहल का हिस्सा है जिसका लक्ष्य कोविड-19 की रोकथाम व उपचार के लिए प्रभावी वैक्सीन व दवाओं को विकसित करना है। इस पहल में वैक्सीन अलायंस गैवी, महामारी से निपटने की तैयारी में अभिनव समाधानों के गठबंधन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलावा बहुराष्ट्रीय विदेशी वैक्सीन निर्माता शामिल हैं। इस पहल के माध्यम से ज्यादा देशों के सहयोग के जरिए COVID-19 वैक्सीन विकसित करने, खरीदे जाने और आवंटित करने की व्यवस्था की जाएगी। UN स्वास्थ्य एजेंसी में 194 सदस्य हैं और अब तक 170 से ज्यादा देशों ने इस सिलसिले में अपनी दिलचस्पी जाहिर की है। इस दिशा में समझौते की शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और देशों से 31 अगस्त तक उनके रुख की पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है।
विश्वव्यापी महामारी COVID-19 के कारण घरेलू हिंसा की रोकथाम और जरूरी सहायता सेवाओं में आए व्यवधान से 100 से ज्यादा देशों में बच्चे शोषण और दुर्व्यवहार का शिकार होने के जोखिम का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के एक नए सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है। यूनिसेफ ने कहा है कि सरकारों को जल्द दीर्घकालीन उपायों को अपनाते हुए बाल हेल्पलाइन सेवाओं को मजबूत बनाना होगा और सामाजिक सेवाओं में निवेश करना होगा ताकि बच्चों को इस खतरे से बचाया जा सके। पूरा ब्यौरा सुनिए प्रतिष्ठा जैन से।
यूनिसेफ के इस सर्वेक्षण में COVID-19 के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पड़ताल की गई है। सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले 136 में से 104 देशों में बच्चों और महिलाओं की मदद के लिए सेवाओं में या तो व्यवधान आया है या फिर उन्हें रोका गया है। हिंसा की रोकथाम के लिए कार्यक्रम, बाल कल्याण एजेंसियों तक बच्चों की पहुंच और राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सर्वेक्षण के नतीजे दर्शाते हैं कि लगभग 2/3 देशों में कम से कम एक सेवा गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। यूनिसेफ का कहना है कि महामारी से पहले भी बच्चों को व्यापक रूप से हिंसा का सामना करना पड़ रहा था और विश्व में करीब 1/2 बच्चों को घर पर पिटाई या अन्य सजा मिलती थी। COVID-19 के कारण अनौपचारिक मदद के नेटवर्क जैसे मित्रों, शिक्षकों, बाल देखभाल कर्मियों, परिवार और समुदाय के अन्य सदस्यों से संपर्क कम होने के कारण हालात और जटिल हो गए हैं। इन हालात में यूनिसेफ सरकारों और साझेदार संगठनों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण सेवाओं को जारी रखने के प्रयासों में जुटा है।
एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के मुताबिक वैश्विक महामारी से निपटने और उसका असर कम करने के लिए क्षेत्र में स्थित देश नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। COVID-19 का संकट गुजर जाने के बाद बेहतर ढंग से पुनर्बहाली सुनिश्चित करने के लिए सरकारें और विशेषज्ञ नवाचार यानी इनोवेशन के जरिए नए समाधान ढूंढने के लिए भी प्रयासरत हैं, लेकिन उसे साकार करने के लिए डिजिटल खाइयों को दूर करना भी अहम है। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
कोरोना वायरस की जीनोम मैपिंग, परीक्षणों की संख्या बढ़ाने, संक्रमण की पहचान करने, संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों को अलग करने और सैटेलाइट इमेजिंग जैसी तकनीकों ने बीमारी के फैलाव पर महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने में मदद की है। लेकिन एशिया प्रशांत क्षेत्र के 4.3 अरब लोगों में से लगभग 52% लोग इंटरनेट सुविधा और टेक्नोलॉजी के फायदों तक पहुंच होने से वंचित हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ने आशंका जताई है कि डिजिटल जगत में व्याप्त खाइयां विषमताओं को और बढ़ाकर समाजों को कमजोर बना सकती हैं। गौरतलब है कि तालाबंदी के कारण आर्थिक गतिविधियां बंद होने पर लाखों प्रवासियों को बड़े शहरों से ग्रामीण इलाकों में स्थित अपने घरों को लौटना पड़ा, लेकिन शहरी केंद्रों में उच्च गति इंटरनेट सेवा की आसान उपलब्धता गांव में सुलभ नहीं थी। प्रवासी कामगारों के बच्चों के पास शहरों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी थी और वहां वो ऑनलाइन कक्षाएं लेने में सक्षम थे, लेकिन खराब कनेक्टिविटी के कारण गांव में वो ऑनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए फाइबर ऑप्टिक बुनियादी ढांचे में निवेश, डिजिटल शिक्षा और कौशल को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत बताई गई है। डिजिटल संपर्क को लोगों के कल्याण के लिए अहम बताते हुए यूएन आयोग ने कहा है कि चूंकि इसमें उच्च लागत लगती है, इसलिए सरकारें निजी क्षेत्र के साथ सहयोग के जरिए फाइबर ऑप्टिक सिस्टम स्थापित करने के लिए आगे आ सकती हैं। अगर फाइबर ऑप्टिक केबल को बिजली लाइनों या राजमार्गों जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ जोड़ दिया जाए तो इन लागतों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
भारत का 80% कृषक समुदाय छोटे किसानों का है, जिन पर जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर पड़ने की आशंका है। एक अनुमान के मुताबिक कटाई के बाद फसलों के खराब होने से हर दिन उन्हें लगभग 1.94 करोड़ डॉलर मूल्य की फसलों का नुकसान होता है। इसका कारण भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे और अच्छी कृषि तकनीकों की कमी, सीमित बाजार और अपर्याप्त इंतजाम है। इस समस्या के समाधान के लिए साइंस फॉर सोसाइटी यानी S4S टेक्नोलॉजी ने छोटे किसानों के लिए फलों और सब्जियों की प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण के लिए सोलर कंडक्शन ड्रायर्स का सहारा लिया है। सौर ऊर्जा से संचालित इस मशीन के जरिए कृषि उत्पादन में नमी की मात्रा को कम किया जाता है ताकि किसान किसी भी रसायन का उपयोग किए बगैर अपनी उपज को एक वर्ष तक संरक्षित रख सकें। अपने इस समाधान के लिए हाल ही में S4S की सह संस्थापक निधि पंत को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के पुरस्कार की अंतिम सूची में जगह मिली। हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने निधि से उनके प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बात की।
किस काम के लिए आपको इस पुरस्कार के फाइनलिस्ट में जगह मिली है, विस्तार से बताएं।
हमारा काम किसानों के साथ है। हम किसान जो अपने खेत से लेके मंडी तक वो जब अपनी फसल ले जाते हैं तो ये पूरे प्रोसेस में उनको कई सारा नुकसान होता है जो कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बोलते हैं हम जिसे। सो हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम करते हैं और ये जो नुकसान है उसको हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। किसानों के खेत में हमारी जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो कि सोलर डिहाइड्रेटर है इसकी स्थापना करते हैं और उनका जो भी फसल है हम वही खेत में इस टेक्नोलॉजी को यूज करके नॉन पेरिशेबल्स में कन्वर्ट करते हैं। नॉन पेरिशेबल से मेरा अर्थ ये है कि अब इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो 1 साल हो गई है विदाउट एनी केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स। और इसी काम से ये किसानों की आय भी बढ़ती है और फल और सब्जी का नुकसान भी नहीं होता।
तो इस काम के लिए निधि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कब सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए?
ये काफी शुरू से ही मेरा एकदम झुकाव इस चीज पे रहा है। तो मेरे माता पिता दोनों ही साइंस बैकग्राउंड से हैं। मेरे पिताजी साइंटिस्ट है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो गवर्नमेंट का क्यूट है। हमारा परिवार एक किसान परिवार है और वहां पे लोगों ने आगे मेरे पिताजी ने आगे एडुकेशन लेके साइंटिस्ट बने। तो उनका हमेशा से यही झुकाव रहा है कि हमें साइंस को का इस्तेमाल करना है, मुश्किल से मुश्किल जो हमारी चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करने के लिए।
ये जो सोलर पावर्ड डिहाइड्रेटर फॉर फूड वेस्टेज है इसका क्या असर देखने को मिला उस इलाके में, इम्पैक्ट क्या रहा है अब तक इस प्रोजेक्ट का?
ये फूड वेस्टेज जो है वो एकदम हमने प्रिवेंट कर दिया है और हम ये सब करते हैं एक सोलर बेस्ड यंत्र की मदद से। सो एक सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड और फूड वेस्टेज से जो मीथेन जैसी गैसेस रिलीज होती हैं उसको प्रिवेंट कर देते हैं। कोई लॉस नहीं होता और कोई वेस्टेज नहीं होता क्योंकि प्रोसेसिंग आपकी फार्म में ही हो रही है जो कि आपका एकदम सोर्स है जहां पे फसल उगती है। दूसरी चीजें हैं सोसाइटल इम्पैक्ट। हम काम करते हैं महिला किसानों के साथ जो कि जिनके पास खुद का लैंड नहीं है और वो नॉन इरिगेटेड एरियाज में लोकेटेड है। इनको हम एम्पावर करते हैं, इनको हम ज्यादा से ज्यादा चीजों अपनी टेक्नोलॉजी और मार्केट लिंकेज जो अश्योर्ड मार्केट हम बोलते हैं कि हम इनसे पूरा बायबैक ही करेंगे जिससे इनकी इनको एक तसल्ली मिलेगी कि हाँ एवरी मंथ मेरे को इतना पैसा तो मिलेगा ही पर इनको कोई भी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है ये पूरे प्रोसेस में। तो ये एनवायरमेंटल और सोसाइटल इम्पैक्ट है और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ये है कि ये सारी चीजें एक सस्टेनेबल वे में हो रही है तो फाइनेंशियली भी एकदम सस्टेनेबल है कंपनी। हम जो भी वैल्यू क्रिएट करते हैं वो थोड़ा फार्मर को पास होता है और थोड़ा कस्टमर्स को पास होता है हमारे।
तो अब तक का सफर कैसा रहा और भविष्य की क्या योजना है?
बहुत ही फुलफिलिंग रहा है। हम ये इम्पैक्ट देखते हैं, हम काम अच्छा होता देखते हैं तो हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और आगे काम करने। तो अभी तो हमें जस्ट यही लगता है कि अभी तो ये सफर बिल्कुल जस्ट शुरू ही हुआ है और अभी तो बहुत काम बाकी है। तो हम उस चीज के लिए एकदम प्रोत्साहित हैं और भी आगे जाके अच्छा काम करना चाहते हैं।
साइंस फॉर सोसाइटी टेक्नोलॉजी की सह संस्थापक निधि पंत से बात कर रही थी अंशु शर्मा। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।